जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदनंदन ब्रज जन रंजन यशोदनंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीरावन चारे जमुना तीरावन चारे जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदनंदन ब्रज जन रंजन यशोदनंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीरावन चारे जमुना तीरावन चारे जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदनंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीरावन चारे जमुना तीरावन चारे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे कृष्णा
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा मदन गोपाल, राधा मदन गोपाल राधे राधे। जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे। जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय। प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की जय। ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् हिज डिवाइन ग्रेस शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज शिल प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की, प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद की, श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की, ब्रजभूमि श्री वृंदावन धाम की, नवद्वीप मायापुर धाम की, पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी धाम की, गंगामय की, जमुनामय की, भक्ति देवी की, कृष्ण भक्ति प्रदायिनी श्रीमती तुलसी महारानी की, श्री हरिनाम संकीर्तन की, श्री श्री राधा मदन गोपाल भगवान की, श्री श्री गौर निताय की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, एकादशी व्रत की, निताय गौर प्रेमानंदी, समवेत गौर भक्त वृंद की, समवेत गौर भक्त वृंद की, समवेत गौर भक्त वृंद की, जय श्री श्री गुरु गौरांग की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम स्कंद दसवा अध्याय क्रमांक 23। इस अध्याय का ये अंतिम श्लोक है, श्लोक क्रमांक 52। इति स्वाघम अनुस्मृत्य कृष्णे ते कृतहेलनाः दिदृक्षवो व्रजम् अथ कंसाद् भीता न चाचलम् इति स्वागम अनुस्मृत्य कृष्णे ते कृतहेलनाः दिदृक्षवो व्रजमथ कंसाद् भीता न चाचलम् इति स्वाघम् अनुस्मृत्य कृष्णे ते कृतहेलनाः दिदृक्षवो व्रजमथ कंसाद् भीता न चाचलन् इति स्वाघम् अनुस्मृत्य कृष्णे ते कृतहेलनाः दिदृक्षवो व्रजमथ कंसाद् भीता न चाचलन् इति इस प्रकार स्वअघम अपने अपराध को अनुस्मृत्य फिर से स्मरण करके कृष्ण ने कृष्ण के विरुद्ध ते वे कृतहेलनाः तिरस्कार प्रदर्शित करने पर दिदुक्षव देखने की इच्छा से व्रजम नंद महाराज के गांव अथ तब कमसात कम से भीता डरे हुए न नहीं च तथा अचलन गए। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के शिष्यों द्वारा। इस प्रकार कृष्ण की उपेक्षा करने से उनके द्वारा जो अपराध हुआ था उसका स्मरण करते हुए उनका दर्शन करने के लिए वे अति उत्सुक हो उठे, किंतु कंस के भयभीत होने के कारण उन्हें व्रज जाने का साहस नहीं हुआ। तात्पर्य, भगवान श्री कृष्ण के विरुद्ध अपने अपराध का अनुभव करते हुए और अंततोगत्वा उनके सर्वशक्तिमान पद की प्रशंसा करते हुए ब्राह्मणों ने व्रज जाकर भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करनी चाहिए, किंतु उन्हें भय था कि जब कंस के गुप्तचर उसे जाकर यह बतलाएंगे कि वे ब्राह्मण कृष्ण के पास गए थे तो वह उन्हें अवश्य मार डालेगा। ब्राह्मण पत्नियां कृष्ण भावनामृत से भावमग्न थी, अतः वे येन केन प्रकारेण कृष्ण के पास चली गईं। जिस तरह गोपियां कृष्ण के साथ नृत्य करने के लिए अर्धरात्रि में जंगली पशुओं से भरे जंगल से होकर गई थी, किंतु ये ब्राह्मण कृष्ण भावनामृत से उस पद ऐसे ऊंचे पद को प्राप्त नहीं हुए थे। अतएव कंस के भय से पराजित होकर भगवान का दर्शन करने वे नहीं जा सके। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं। वंदेहं श्रीगुरुः श्रीयुत पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपां सागरजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पदान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधुर्जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा। जो भी भक्तों ने मोबाइल फ़ोन लाए हो कृपया उसे आप साइलेंट मोड पर रख दो, और जो भी भक्तों ने अपनी गाड़ियाँ कॉलोनी के वाले रोड में लगाई है उनको निवेदन है अपनी गाड़ियाँ तुरंत वहाँ से हटा के अपना जो नया ग्राउंड है उस ग्राउंड पर लगाइए, नहीं तो कोई भी अगर आपकी गाड़ी को तकलीफ होती है तो मंदिर उसका जिम्मेदार नहीं होगा। हरे कृष्ण
हरे कृष्ण। सभी भक्तों का स्वागत है हमारे रविवार के श्रीमद् भागवतम क्लास में। ब्राह्मण पत्नियों का उद्धार इस प्रसंग का ये अंतिम श्लोक है और बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, इसलिए हम इस श्लोक को दो भाग में लेंगे आज, और फिर हमारी अगली सिटिंग में इसका दूसरा भाग लिया जाएगा। ये हम साधकों के लिए इतना महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि आज के श्लोक में सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि जब ब्राह्मणों की पत्नियों का उद्धार हो चुका था, उसके पश्चात जब इनके पति वो इस साक्षात्कार को प्राप्त हुए कि उनसे कितनी बड़ी गलती हुई या वो कितने दुर्भाग्यशाली रहे, यह साक्षात्कार प्राप्त करने के पश्चात उनके अंदर उत्कंठा भगवान श्री कृष्ण को देखने की हुई, लालसा हुई भगवान की सेवा करने की। और आज के श्लोक में सुखदेव गोस्वामी इन ब्राह्मणों का मनोभाव बता रहे हैं, और इन ब्राह्मणों का मनोभाव एक मिश्रित मनोभाव था, मिक्स्ड इमोशंस। जैसे यहां पर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि सबसे पहले उन्होंने अपने पाप का स्मरण किया, स्व अघम अनुस्मृत्य। तो ये जो शब्द है स्व अघम, अघम का अर्थ है पाप, और स्व अघम का अर्थ है स्वयं द्वारा किया गया पाप। अनुस्मृत्य, ब्राह्मणों ने स्वयं द्वारा किया गए पाप का स्मरण किया। पाप क्या किया था उन्होंने, कि स्वयं कृष्ण बलराम जो कि यज्ञेश्वर हैं, यज्ञ भूख हैं, वो मांगने के लिए आए कि दीजिए, और इन्होंने नहीं दिया बल्कि अपमानित कर कर भगवान के पार्षदों को भेज दिया, तो ये उनका अपराध है। तो स्व अघम अनुस्मृत्य, उस पाप को याद करते हुए उनके मन में दिदृक्षवो व्रजमथ, व्रज जाने की, और व्रज में ब्रज बिहारी जो हैं उनका दर्शन करने की दिदृक्षवो इच्छा जागृत हुई। परंतु हमने कहा कि मिक्स्ड फीलिंग्स इनके अंदर थी, मिश्रित भावनाएं थी। तो ये दूसरी फीलिंग या दूसरा इमोशन क्या था इसके साथ साथ, एक तरफ उत्कंठा भगवान को देखने की, और दूसरी तरफ भय, कंस का भय। तो अंतिम पद में लिखते हैं सुखदेव गोस्वामी, कंसात भीता न चाचलन, कि वो नहीं जा सके, इच्छा बहुत थी परंतु उनके कदम ब्रज की ओर नहीं उठ सके। न चाचलन, क्यों? क्योंकि कंसात भीता, कंस का भय। तो क्यों हम साधकों के लिए ये श्लोक इतना महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारी साधना भक्ति में भी हम अक्सर इन मिक्स्ड इमोशंस में अपने आप को पाते हैं, इन ब्राह्मणों की तरह। साक्षात्कार हो चुका है कि सौभाग्य हमारा कहां पर छिपा है, जैसे इनको साक्षात्कार हो गया था, पता है, ज्ञान है कि भगवान श्री कृष्ण वही हमारी साधना के उद्देश्य हैं। और इतना ही नहीं, ज्ञान केवल नहीं बल्कि ज्ञान के साथ साथ भगवान को पाने की उत्कंठा भी है। हम लोग जो इतने वर्षों से साधना कर रहे हैं, हम इस स्तर तक तो पहुंच गए हैं कि भगवान को पाने की इच्छा है। ये नहीं कह सकते कि भगवान को प्राप्त करने की इच्छा नहीं, हाँ भगवान को प्राप्त करने की इच्छा है, जैसे कि इन ब्राह्मणों के अंदर दिदृक्षवो। परंतु उसके साथ साथ इन ब्राह्मणों की तरह हमारे अंदर भी भय है, मिक्स्ड इमोशंस। और भय किसका है? इनको तो कंस का भय। और वास्तविक रूप में कंस का भय क्या था? क्योंकि ये कंस के राज्य में थे, वहां पर ये मथुरा की ओर थे ये ब्राह्मण, और कंस इनका भरण पोषण किया करता था। तो जो मेंटेनेंस इनको कंस से मिलता वो छूट जाता। कंस को पता लगता कि मेरे द्वारा पोषित, मेरे द्वारा नरिष्ट ये ब्राह्मण मेरे शत्रु कृष्ण और बलराम की इच्छा रखते हैं या उनका दर्शन करने जा रहे हैं। तो कंस इनको जो मेंटेनेंस दे रहा था वो मेंटेनेंस देना बंद कर देता। तो कंस के द्वारा मेंटेन्ड या कंस के द्वारा पोषित जो मेंटेनेंस उनको मिल रहा था वो क्या था? उनका इंद्रिय भोग। तो एक तरफ माया द्वारा हमको मेंटेनेंस जो दिया जाता है वो एक इमोशन हमारे अंदर होता है, मेंटेन्ड, और अवर सेंस ग्रेटिफिकेशन मेंटेन्ड बाय माया एंड ईगरनेस टू हैव कृष्णा। ये है मिक्स्ड इमोशंस हमारे अंदर। तो हम साधकों के लिए ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है कि स्व अघम अनुस्मृत्य, हम हमारे पापों को भी याद करते रहते हैं कि हमने कौन कौन से पाप किए हैं या कौन कौन से पाप कर रहे हैं, उनका स्मरण हमको है। और उसके साथ साथ इच्छा भी है कि इस पाप कृत्य जीवन से हम मुक्त हों। वो इच्छा भगवान को प्राप्त करने की इच्छा, परंतु उसके साथ साथ इंद्रिय भोग न छूटे, वो भी डर कि कहीं इंद्रिय भोग न छूट जाए। तो हम फिर हमारी कलयुगी बुद्धि लगाते हैं। और कलयुगी बुद्धि क्या है? जैसे तात्पर्य में, मैं जब तात्पर्य पढ़ रहा था तो श्रील प्रभुपाद ने तात्पर्य में लिखा है कि एक तरफ हैं ये ब्राह्मण, दूसरी तरफ हैं इनकी पत्नियां। उनको बिल्कुल भय नहीं था, उनको न तो कंस का भय था न अपने पतियों का भय था, और निर्भय होकर वो निकल पड़ी। एक तो स्त्रियां, और वो भी विवाहित स्त्रियां, और वो भी कलयुग की नहीं। और वो निकल पड़ी, और उस समय वो समारोह चल रहा था, कोई ऐसा आम दिन नहीं था, वो बहुत बड़ा यज्ञ वहां पर आयोजित किया गया था। और उस यज्ञ में इनका सहकार्य इनको देना बहुत महत्वपूर्ण था। उस समय निर्भय होकर ये पत्नियां भगवान श्री कृष्ण बलराम, और भगवान श्री कृष्ण बलराम को केवल वो कुछ भोग देने नहीं गई थी, वो शरणागत होने गई थी कि बस अब इससे आगे हम और किसी को अपना आराध्य नहीं मानेंगे। तो एक तरफ इनका फियरलेसनेस ये पत्नियों का, और दूसरी तरफ ये पति ये इतने भयभीत। तो प्रभुपाद तात्पर्य में गोपियों का उदाहरण दे रहे हैं कि कैसे गोपियां भी रासलीला के समय अपने घर परिवार को छोड़ते हुए मध्य रात्रि ऐसे जंगल, ऐसे वन में उन्होंने प्रवेश किया जहां पर जंगली जानवर, पशु इत्यादि। तो हमारी स्थिति क्या है? वी ऑल्सो वॉन्ट रासलीला बट एट होम, घर में। घर नहीं छोड़ना, रासलीला में भाग लेना है भगवान के, लेकिन गोपियों की तरह हमको त्याग नहीं दिखाना। सो रासलीला एट होम, यह हमारी स्थिति है। तो कलयुग की बुद्धि क्या है, हमको दोनों चीजें चाहिए, हमारा इंद्रिय भोग भी मिलता रहना चाहिए और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति भी। जैसे वो इंग्लिश का एक सेइंग है, एवरीवन वांट्स टू गो टू हेवन बट नो वन वांट्स टू डाई। हम स्वर्ग जाना चाहते हैं बिना मरे। अरे भाई, स्वर्ग अगर जाना है तो पहले मरना पड़ेगा ना। नहीं, कोई ऐसी योजना अगर हो कि बिना मरे, बिना तकलीफ के हम स्वर्ग पहुंच जाए, तो ये स्थिति है कलयुग के जीवों की। दयामृत महाराज वो अपने एक प्रवचन में कह रहे थे, पीपल ऑफ कलयुगा दे हैव रियलाइज्ड दैट मटीरियलिज्म इज ब्रिंगिंग मिजरी, बट व्हाट इज देयर होप एंड डिजायर एंड एम्बिशन। उन्होंने अच्छा टर्म यूज किया, दे आर प्रेइंग व्हाई कांट वी हैव अ लस्टी पीसफुल सोसाइटी। दे वॉन्ट पीसफुल सोसाइटी बट दे डोंट वॉन्ट टू गिव अप लस्ट, सो दे आर होपिंग व्हाई कांट वी हैव अ लस्टी पीसफुल सोसाइटी। इसको कहते हैं मिक्स्ड इमोशंस कलयुग के। तो इसके विषय में मैं सोच रहा था कि कलयुग जो कि विख्यात है या कुख्यात है किसके लिए, क्वारल एंड हिपोक्रेसी। तो सबसे पहले जो हिपोक्रेसी कलयुग की क्या है, हम लोग यहां पर आए भगवान बनने के लिए और हमें इस भौतिक संसार के तीन गुण भी चाहिए और भगवान का पद भी चाहिए। माया देवी के अधीन भी रहना चाहते हैं, उसके इंद्रिय भोग में, और भगवान का पद भी चाहिए। इसको कहते हैं हिपोक्रेसी। वी वॉन्ट बेस्ट ऑफ मटीरियल वर्ल्ड एंड बेस्ट ऑफ स्पिरिचुअल वर्ल्ड, ये कलयुग की हिपोक्रेसी। कि आध्यात्मिक संसार छोड़ा है तो भौतिक संसार में भी हम आध्यात्मिक संसार का आनंद चाहते हैं, आध्यात्मिक संसार का सुकून चाहते हैं, कोई दुख नहीं चाहते। वो सब आध्यात्मिक संसार के गुण हैं, हम वो सब यहां चाहते हैं परंतु भगवान की भक्ति नहीं चाहते। वहां के फ्रिंज बेनिफिट्स जानते हैं, जो बाय प्रोडक्ट्स होते हैं ना किसी जगह के, फ्रिंज बेनिफिट्स होते हैं। सो वी वांट द फ्रिंज बेनिफिट्स ऑफ स्पिरिचुअल वर्ल्ड, येट वी डोंट वांट टू सर्व कृष्णा। Therefore, we have made a makeshift arrangement in this material world. और वो है दंभ, वो है कपट यहां का। तो जब वो पूरा नहीं होता, क्योंकि वो तो होगा नहीं, we can't get best of both worlds. तो वो जब पूरा नहीं होता तब हम लड़ते हैं। So the second quality of Kaliyuga is quarrel. When our hypocritical ambitions are not fulfilled, then we quarrel. Jai Shri Radha Madan Gopal Ji ki. To aajkal aap dekho Kaliyug mein लोग ये फिलॉसफी का बहुत प्रचलन कर रहे हैं। कौन सी फिलॉसफी? इस फिलॉसफी को मैंने नाम दिया है शुगर फ्री स्वीट्स। इस फिलॉसफी का नाम है शुगर फ्री स्वीट्स। स्वीट खाना है लेकिन चीनी नहीं होनी चाहिए उसमें, क्योंकि फिर डायबिटीज हो जाएगा या डायबिटीज है। लेकिन स्वीट नहीं छोड़ेंगे तो आजकल वो लोग निकालते हैं ना नेचुरा, शुगर फ्री, कि आप इसको डालो और स्वीट खाना जारी रखो। तो मॉडर्न फिलॉसफी क्या है कि हमको इंद्रिय भोग भी करना है और इंद्रिय भोग के जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं उनसे बचना है, या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी इंद्रिय भोग की। जैसे ये जो हम बता रहे हैं कि ये कपट इस भौतिक संसार में आकर हम आध्यात्मिक संसार के भी अच्छे अच्छी चीजें चाहते हैं और इस भौतिक संसार का इंद्रिय भोग भी चाहते हैं। बहुत वर्षों पहले मैंने एक किताब पढ़ी थी और फिर मुझे बताया गया कि उस किताब के ऊपर एक हॉलीवुड मूवी बनी थी, ब्रूस द ऑलमाइटी। बहुत इंटरेस्टिंग इसका प्लॉट था इस किताब का। तो इसमें ये एक व्यक्ति जिसका नाम ब्रूस, परेशान भौतिक जीवन से, परेशान त्रस्त, वो भगवान को ललकारता है कि आप हो कि नहीं, इतने लोग आपको पूछते रहते हैं आप हो कि नहीं। तो ये भगवान को ललकारता है और भगवान प्रकट हो जाते हैं कि भाई क्या है तेरे, समस्या क्या है, क्या मांगना चाहते। तो जब भगवान प्रकट हो जाते हैं तो ये विश्वास नहीं करता। तो भगवान पूछते हैं मांगो, तेरे को क्या मांगना है? तो ये कहता है कि मुझे आपका पद दे दो, 7 दिन के लिए मुझे आपका पद दे दो, मुझे भगवान बनना है। तो इसलिए ये बुक का टाइटल था ब्रूस बिकम्स द ऑलमाइटी। तो ये भगवान 7 दिन के लिए इसको अपना पद देते। तो इसको क्या लगता है कि ये भगवान को कोई नौकरी नहीं है, कोई लोन वोन इनको देने नहीं पड़ते, तो बहुत ऐशो आराम का जीवन है। तो उसको वो जीवन चाहिए था भगवान का, ऐशो आराम वाला जीवन। तो उसको जब भगवान कहते हैं ठीक है 7 दिन के लिए तू मेरी चेयर पर बैठ जा, तू मेरे पोस्ट पर आ जा, अब होता क्या है कि उसको केवल वही ज्ञान होता है कि भगवान के जो फैसिलिटीज है, बेनिफिट्स हैं भगवान बनने के, वो सब उसको होंगे। फिर अचानक उसको रात को और सुबह सुबह बहुत सारी आवाजें सुनाई देती हैं, इतनी सारी आवाजें कि उसको नींद नहीं आती। और ये आवाजें कौन सी होती हैं? पूरे संसार में जितने ये भगवान के भक्त, वो अपनी अपनी प्रार्थनाएं बोलना शुरू करते हैं। कोई चर्च में बोल रहा है, कोई मस्जिद में बोल रहा है, कोई मंदिर में बोल रहा है, तो सब अपनी अपनी प्रार्थनाएं तो भगवान को कर रहे हैं। तो अब इसके कान, अब ये भगवान का इसने पोस्ट लिया है 7 दिन के लिए, तो सारी प्रार्थनाएं, और ये भगवान के पास जाता है, जो ओरिजिनल भगवान के पास जाता है, और कहता है कि ये सब क्या है? भगवान ने कहा भाई ये तो मेरी ड्यूटी है, ये तो अब तूने जब पूरी पोस्ट लिए तो ये भी निभाना पड़ेगा तेरे को, अब उनके प्रार्थनाओं को आंसर कर। और एक एक ऐसी ऐसी प्रार्थना वो सुन के, वो कहते हैं ना, पक जाता है, थक जाता है। और फिर सबका भरण पोषण करना, पूरे सृष्टि को मैनेज करना, ये सब कुछ उसने सोचा नहीं था। और फिर लास्ट में परेशान होकर वो भगवान के सामने घुटने टेक कर बोलता है कि नहीं भगवान आप ही हो सकते हैं, कोई आपको इमिटेट करने जाए मैं उसको कहूंगा कि उसकी हालत क्या होगी। तो ये है कलयुगी बुद्धि, ब्रूस द ऑलमाइटी। वी ऑल वांट टू बिकम द ऑलमाइटी विदाउट हैविंग द माइट। वी वॉन्ट टू बिकम दी ऑल माइटी. बेस्ट ऑफ बोथ चाहिए हमको. जैसे हाल ही में मैं लाइफस्टाइल मैनेजमेंट का एक सेमिनार मैंने लिया. कुछ बंबई के कॉरपोरेट्स आए थे यहां नासिक, तो वहां पर मैं एक पॉइंट उनके सामने प्रस्तुत कर रहा था कि आजकल लोगों के मन में कौन से एम्बिशंस होते हैं. तो एक स्लाइड मैंने दिखाया जिसके अंदर एक मॉडर्न मैन के चार एम्बिशंस और उसको कॉम्बिनेशन चाहिए चार के. सो ही वांट्स, द मॉडर्न मैन वांट्स अमेरिकन सैलरी. अगर सैलरी होनी चाहिए तो अमेरिकन होनी चाहिए. ही वांट्स अमेरिकन सैलरी, जर्मन कार. गाड़ी होनी चाहिए तो जर्मनी की कार्स, जर्मनी की फेमस है. अमेरिकन सैलरी, जर्मन कार, चाइनीज फूड एंड इंडियन वाइफ. Why Indian wife? Because Indian wives are chaste. वो पतिव्रता होती हैं, खाना वाना बना के खिलाएंगी. वो चाइनीज फूड फेमस है सबसे, जर्मन कार फेमस है, और सैलरी चाहिए तो अमेरिकन सैलरी. बट अनफॉर्चुनेटली वॉट वी सी, वॉट हैपन्स मोस्टली इज पीपल गेट जर्मन फूड विच इज मिजरेबल. They get German food, they get Chinese car, they get American wife and Indian salary. तो ये सबसे deadly combination है. और उनको क्या चाहिए? Best of these countries. जर्मनी का फूड बेकार है लेकिन कार बहुत अच्छी है. अमेरिकन सैलरी बहुत अच्छी है, वाइफ कोई ठिकाना नहीं कब तक रहेगी. इंडियन वाइफ बहुत अच्छी है, सैलरी पूछो पता नहीं है कि नहीं. तो लोगों को मैं बोल रहा था कि ये कॉम्बिनेशन चाहिए, सब बेस्ट ऑफ एवरीथिंग. परंतु कलयुग ये ऐसा है कि हम अगर कलयुग को चीट करने जाएं, कलयुग चीट्स अस रॉयली. कलयुग रॉयली चीट्स अस. हाउ? बाय मेकिंग अस फील दैट वी आर प्लेइंग गॉड ओवर हियर, ब्रूस द ऑलमाइटी. हमको वो लगता है कि हम, हां मैं हूं, ईश्वरो हम अहम भोगी, सिद्धो हम बलवान सुखी. तो यहां पर ये ब्राह्मणों के हृदय में भी ये सब चल रहा था कि भगवान को प्राप्त करने की इच्छा है लेकिन अपना मेंटेनेंस नहीं छोड़ना चाहते. वो जगह नहीं छोड़ना चाहते जहां पर कंस उनको मेंटेन कर रहा है, उसको नहीं छोड़ना चाहते. तो यहां पर देखिए उनके अंदर भगवान के प्रति विश्वास था परंतु श्रद्धा नहीं थी. और इनकी पत्नियों के अंदर भगवान के प्रति श्रद्धा थी. तो हम इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि श्रद्धा और विश्वास में अंतर क्या है. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बिलीफ एंड फेथ. बिलीफ कहेंगे विश्वास को और फेथ कहेंगे श्रद्धा को. जैसे एक बार एक व्यक्ति वो एक शहर में अपने कर्तव्य दिखा रहा था. जैसे होते ना ये कई लोग टाइट रोप के ऊपर चलते हैं, वॉकिंग ऑन टाइट रोप, रस्सी के ऊपर चलना. तो ये व्यक्ति ने पूरे शहर को बुलाया और ये एक ऐसा कर्तव्य दिखा रहा था उस शहर के नागरिकों को जो उन्होंने कभी देखा नहीं था. तो उसने 25 मंजिली दो बिल्डिंग के बीच में रस्सी बांध दी सोचिए इतनी ऊंची इमारत, दो इमारतों के बीच में उसने रस्सी बांधी और उसके ऊपर बिना सपोर्ट, और पूरा शहर देखने के लिए नीचे खड़ा है, बिना सपोर्ट ये उसके ऊपर चला। तो एक बार बिना सपोर्ट कुछ भी, कोई बम्बू हाथ में नहीं, कुछ नहीं, चला ये और ये सक्सेसफुली पार कर लिया इसने। फिर इसने दो सिलेंडर लिए और वो सिलेंडर लेके वो चला, उसमें भी वो सक्सेसफुल रहा, सभी लोग तालियां नीचे, वाह वाह वाह, ऐसा करतब तो हमने कभी नहीं देखा। फिर उसने, उसका एक असिस्टेंट था, उस असिस्टेंट को अपने कंधे पर लिया, अपने असिस्टेंट को कंधे पर लेकर उस टाइट रोप पर वो चला। तो सभी, और फिर इसके पश्चात उसने सभी को पूछा, तो क्या आप लोगों को विश्वास है कि ये जो लास्ट मैंने कर्तव्य किया, मेरे असिस्टेंट को मेरे पीठ पर लेकर मैं चला, आप लोगों को विश्वास है कि मैं ये रिपीट कर सकता हूं? सब लोग बोले हाँ डेफिनेटली आप रिपीट कर सकते हैं। तो उसने कहा ठीक है, आप लोगों में से कौन मेरे पीठ पे आएगा? जैसे उसने वो प्रश्न पूछा, अब आओ आप में से कोई मेरे पीठ पर आओ, तो सब अच्छा मिलते हैं बाद में। तो ये स्टोरी है डिफरेंस बिटवीन बिलीफ एंड फेथ। These people had belief that he can do that, but they didn't have faith. जैसे वो एक और कहानी है, एक व्यक्ति वो चढ़ाई कर रहा था पहाड़ पर, और चढ़ाई करते समय उसका पैर फिसला और रस्सी बांधी हुई थी लेकिन वो लटक गया, और ऐसी स्थिति में वो लटका हुआ था कि वो ना नीचे जा पा रहा था ना ऊपर जा पा रहा था, मिड एयर में, और अंधेरा हो गया। और उस समय वो डर के कारण भगवान को प्रार्थना करने लगा कि भगवान आप अगर हैं तो मेरी मदद कीजिए, मैं पता नहीं कहाँ लटका हुआ हूं और कब तक लटका रहूंगा, पता नहीं ये रस्सी कब तक मुझे बचाए रखेगी। तो फिर बहुत घंटे बीत जाते हैं, भगवान को प्रार्थना करता रहता है, फिर भगवान की आवाज सुनाई देती, भगवान कहते हैं तेरे जेब में एक चाकू है, वो चाकू निकाल और ये रस्सी को काट दे। तो पहले तो उसको शक आता है कि ये भगवान बोल रहे हैं कि और कौन बोल रहे हैं। भगवान कहते हैं मुझ में श्रद्धा रख, मैं जिसकी प्रार्थना तू पूरी रात भर कर रहा था, मैं भगवान तुझे सलाह दे रहा हूं, वो चाकू निकाल और ये रस्सी काट। तो उसको विश्वास नहीं, उसको श्रद्धा नहीं थी भगवान में इस वाक्यों पर, तो उसने नहीं किया। फिर बाद में जब सूर्योदय हुआ तो उसने देखा कि वो केवल एक फुट ऊंचा जमीन से था, he was just one foot above the ground। तब वो कोसने लगा, अरे मैं भगवान पर श्रद्धा रख लेता तो भगवान ने सही कहा था, अगर मैं रस्सी काट देता तो मैं खाली एक फुट ही ऊंचा था जमीन से। तो यहां पर हमारी भी स्थिति ऐसी है, हम भी भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान मुझे बचा लो, भगवान जब आके क्या बोलते हैं कि ये आसक्ति को काटो, हमारी रस्सी कौन सी, हमारी आसक्ति, हमारी आसक्ति वो रस्सी के समान, उसको पकड़े में, भगवान कहते हैं चाकू निकाल और उसको काट। तो हम भगवान से क्या कहते हैं, भगवान पहले आप नीचे से पकड़ो फिर मैं काटता हूं। सो आवर डिवोशनल सर्विस इज कंडीशनल, वी हैव सो मेनी कंडीशंस कि भगवान अगर आप मेरे लिए ये अरेंजमेंट कर दोगे तो मैं निर्जल करूंगा एकादशी आपकी, अगर द्वादशी में आप मेरे लिए फीस्ट अरेंज कर दोगे तो मैं एकादशी निर्जल करता हूं। तो ये जो स्थिति है जिसके अंदर हम बेस्ट ऑफ बोथ चाहते हैं, ये उपज किसकी है? चीटिंग प्रोपेंसिटी. दिस इज कमिंग फ्रॉम द चीटिंग प्रोपेंसिटी. जैसे एक बार एक व्यक्ति वो भगवान के पास जाता है और भगवान को पूछता है, मतलब वो भगवान से कुछ धन मांगना चाहता था लेकिन सोचा कि डायरेक्टली कैसे मांगू. तो भगवान से पूछता है, भगवान आपका एक मिनट कितना होता है? भगवान कहे, मेरा एक मिनट तुम्हारे 1000 साल होते हैं. अच्छा, और आपका एक पैसा कितना होता है? तो भगवान ने कहा, मेरा एक पैसा तुम्हारा 1 करोड़. तो उसने कहा, तो भगवान आपका एक पैसा दोगे मुझे? भगवान ने कहा, हाँ एक मिनट रुको थोड़ा. जैसे एक व्यक्ति वो भगवान से प्रार्थना किया कि भगवान ये मैं 1 करोड़ की लॉटरी खरीद रहा हूं, अगर आप मुझे जिता दोगे तो 50 लाख आपके. तो हुआ क्या कि उसने लॉटरी तो खरीदी लेकिन वो जीता 50 लाख. 1 करोड़ के बदले 50 लाख जीता. तब जो उसने प्रॉमिस किया था कि आधा देगा ना, आधा रकम. तो भगवान से कहता, भगवान आप तो बहुत चतुर निकले, पहले ही आपने ले लिया आपके 50 लाख. तो जब आपने खुद ले ही लिए हैं आपके 50 लाख तो मैं अपने रख लेता हूं. तो ये है कलयुगी बुद्धि, ये चीटिंग प्रोपेंसिटी. वी वॉन्ट बेस्ट ऑफ एवरीथिंग. वी वॉन्ट बेस्ट ऑफ स्पिरिचुअल वर्ल्ड, स्पिरिचुअलिटी. वी वॉन्ट बेस्ट ऑफ मटीरियलिटी. इसको कहते हैं द हिपोक्रेसी ऑफ कलयुग. तो प्रभुपाद एक वर्ड यूज करते हैं अपने परपोर्ट्स में, अनफ्लिंचिंग फेथ. केवल फेथ नहीं, अनफ्लिंचिंग फेथ, कि श्रद्धा ऐसी होनी चाहिए. अच्छा, विश्वास और श्रद्धा, इसमें अंतर क्या है? कि विश्वास का अर्थ है भगवान ये कर सकते हैं, इसको कहते हैं विश्वास. कि भगवान ये कर सकते हैं इसे कहते हैं विश्वास. और श्रद्धा, भगवान ये करेंगे मेरे लिए, इसको बोलते हैं श्रद्धा. अब देखिए, ये दोनों में बहुत बड़ा अंतर है. कोई व्यक्ति कुछ कर सकता है और कोई व्यक्ति आपके लिए कुछ करना चाहता है. दोनों में जमीन आसमान का अंतर है. जैसे कि मिस्टर अंबानी, वो मुझे 1 करोड़ रुपया दान दे सकता है अभी इसी वक्त, लेकिन वो देगा कि नहीं वो अलग बात है. दे सकता है, उसके अंदर कॉम्पिटेंस है देने का, बट दिल है क्या देने का, वो अलग बात है. तो विश्वास क्या है? कि भगवान के अंदर कॉम्पिटेंस है, परंतु भगवान मेरे लिए करेंगे कि नहीं करेंगे वो डिसाइड करता है कि भगवान के अंदर वो कैरेक्टर है कि नहीं. सो विश्वास और बिलीफ टॉक्स अबाउट कॉम्पिटेंस ऑफ गॉड, एंड फेथ टॉक्स अबाउट द कैरेक्टर ऑफ गॉड. तो हमारे अंदर बहुत बार भगवान के प्रति विश्वास होता है कि हाँ भगवान सर्वशक्तिमान है, लेकिन मेरे लिए, मेरे भक्ति को बढ़ाने के लिए या मेरी विपदाओं को दूर करने के लिए वो इच्छा रखते हैं कि नहीं, ये श्रद्धा हमारे अंदर नहीं होती. तो इसलिए ये जानना बहुत जरूरी है कि मेरे अंदर भगवान के प्रति श्रद्धा जागृत हो रही कि नहीं. हाँ, विश्वास तो उसकी शुरुआत है, परंतु वो श्रद्धा में परिणित हो रही कि नहीं. जैसे जब हम डिफेंस में थे तो हमको एक ये कहानी सुनाई गई थी कि दो सैनिक बहुत घनिष्ठ मित्र थे आर्मी के, तो युद्ध छिड़ा और दोनों बहुत घनिष्ठ मित्र दोनों युद्ध कर रहे हैं एक साथ एक ही छावनी में शत्रु पक्ष से, और युद्ध करते करते एक जो सैनिक एक मित्र घायल हो गया और वो घायल अवस्था में गिरा हुआ था, और जो कमांडर था उसने फिर सभियों को वापस बुलाया बेस कैंप में कि जितने हैं हम लोग दूसरी ओर से हम प्रहार करेंगे। तो अब ये जो मित्र जो बचा हुआ था इसको कमांडर ने बुला लिया, तो ये बेस कैंप में आने के बाद कमांडर से कहता है कि मेरा मित्र वहां घायल अवस्था में है, मुझे उसके पास जाना है। तो कमांडर कहता है कि वहां मत जाओ क्योंकि उसके बचने की कोई आशा नहीं है, वो जिस दशा में वहां पर गिरा हुआ है और जिस जगह पर वो गिरा हुआ है वो शत्रु पक्ष के अरीना में गिरा हुआ है, तो वहां जाओगे एक तो तुम उसको बचा नहीं पाओगे और तुम भी मरोगे। तो उसने कहा नहीं मुझे फिर भी जाना है। वो जाता है, बहुत जद्दोजहद कर कर वो पहुंचता है वहां पर, पहुंचता है और पहुंचने के एक मिनट बाद वो घायल मित्र अपने प्राण छोड़ देता है, और फिर ये वापस आता है तो कमांडर पूछता है तो तुम बचा पाए उसको? उसने कहा नहीं मैं गया और एक मिनट बाद वो मर गया मेरा मित्र। तो क्या फायदा हुआ, क्या फायदा हुआ तुम्हारे जाने का? उसने कहा फायदा हुआ उस एक मिनट में उसने जब मुझे देखा तो उसने मुझे कहा मुझे श्रद्धा थी कि तुम आओगे, आई हैड फेथ दैट यू विल कम, और उसके बाद वो मर गया। तो उसने ये नहीं कहा कि तुम मुझे आके बचाओगे, ही वॉज नॉट टॉकिंग अबाउट द कॉम्पिटेंस ऑफ द फ्रेंड, ही वॉज टॉकिंग अबाउट द कैरेक्टर ऑफ द फ्रेंड, कि मुझे पता था कि तुम नहीं बचा पाओगे, कोई भी मुझे नहीं बचा पाएगा, लेकिन मैं तुम्हारे कैरेक्टर पर श्रद्धा रख रहा था, आई न्यू दैट यू वुड कम बिफोर आई डाई। इसको बोलते हैं श्रद्धा। अब इस भौतिक संसार में कई बार हम बहुत कॉम्पिटेंट लोगों को भी देखते हैं जो बहुत निपुण होते हैं, परंतु उनके अंदर कैरेक्टर नहीं होने के वजह से हमारी श्रद्धा उनके अंदर नहीं रहती। जैसे जब मैं पहली बार अमेरिका गया तो वहां पर मैंने देखा कि वहां के जो ट्रैफिक पुलिस, अब ट्रैफिक पुलिस की ड्यूटी है कि जो ट्रैफिक है और जो गाड़ियां चला रहे हैं उनकी वो मदद करें, परंतु मैं देखा कि वो झाड़ियों में छिपे हुए अपनी गाड़ी कैमोफ्लेज्ड रखते थे ताकि जो भी स्पीडिंग कर रहा है उसको पकड़े हों। तो उनका कॉन्शियसनेस क्या होता है कि ये न के न प्रकार है ना हम किसको टिकट दें, फाइन करें। और आपने भारत में भी देखा होगा कि कभी कोई ट्रैफिक पुलिस आपको रिवॉर्ड नहीं करेगा कि इतने सालों से आप अच्छा गाड़ी चला रहे हो, कभी आपका फाइन नहीं, कभी सिग्नल नहीं तोड़ा, कभी आपने स्पीड लिमिट क्रॉस नहीं किया, कभी आपको रिवॉर्ड नहीं करेंगे। 10 साल 20 साल आप अच्छी गाड़ी चलाओ कोई आपको अवार्ड नहीं मिलने वाला है उसका, और 20 साल अच्छी गाड़ी चलाने के बाद एक बार आपने सिग्नल तोड़ा तुरंत वो उधर खड़े रहेंगे पकड़ने के लिए। निपुण है लेकिन कैरेक्टर नहीं। एक बार एक ट्रैफिक पुलिस ने देखा दो बूढ़े व्यक्ति बाइक चला रहे हैं, एक चला रहा है और एक पीछे बैठ, तो उसको कैसे तो पकड़ना था, कुछ तो इनके अंदर ढूंढना था। तो उसने रुकाया, आपका लाइसेंस दिखाओ, तो लाइसेंस भी बराबर था, बाइक का रजिस्ट्रेशन पेपर वो भी बराबर था, पीयूसी सब कुछ बराबर था। उसने कहा कुछ भी नहीं पकड़ने के लिए। तो फिर कहा ठीक है बोला कि इतने वृद्ध अवस्था में तुम लोगों को डर नहीं लगता है ऐसे बाइक चलाते हो? तो उसने कहा डर क्यों, भगवान हमारे साथ है। अच्छा ट्रिपल सीट चला रहे हो? और फाइन कर दी, पहले से दो बैठे हैं और बोलते भगवान हमारे साथ है। ऐसे ही एक बार दो बाइक पे फास्ट जा रहे थे तो ट्रैफिक पुलिस थाम्बा रुको, तो जो चला रहा था बोला जगह नहीं आपके लिए। तो श्रद्धा और विश्वास, ब्राह्मणों के अंदर भगवान के प्रति विश्वास था परंतु श्रद्धा नहीं थी कि चाहे कुछ भी हो जाए ये कंस से बचा लेंगे हमें। तो यदि हम कुछ उदाहरण लें शास्त्रों के, ये भगवान कृष्ण की लीला के उदाहरण लें, जैसे भगवान ने दावानल पान किया, अचानक गौचारण करते समय जो दावानल दावाग्नि उस वन की दावाग्नि भड़कने लगी और वो एक असुर था कंस द्वारा भेजा गया जो कि उस दावाग्नि के रूप में वहां पर आया सबको खत्म करने के लिए, भस्म करने के लिए। तो भगवान ने जब सारे वो गोप और गौएं चारों ओर उनकी अग्नि ये दावाग्नि वन की इससे घिरे हुए तो वो भगवान श्री कृष्ण के पास जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, याचना करते हैं। तो भगवान सबसे पहले इनको कहते हैं अपनी आंखें बंद करो, अपनी आंखें बंद करने के लिए बोलते हैं भगवान। तो उसके तात्पर्य में हमारे आचार्यगण कहते हैं कि भगवान ने इनको आंखें बंद करने के लिए क्यों कहा, क्योंकि भगवान ये दिखाना चाहते थे कि मेरे जो शुद्ध भक्त हैं उनके अंदर मेरे प्रति अंधी श्रद्धा है, कि आंख बंद कर मैं जो करूंगा वो तुम्हारी भलाई के लिए ही करूंगा। इसलिए इसके विषय में मैं सोच रहा था कि जो अष्टांग योग है, अष्टांग योगी को पूरी आंखें बंद करने के लिए मना किया जाता है, भक्ति योगी जो है वो पूरी आंखें बंद करते हैं, चाहे वो प्रवचन चल रहा हो चाहे जप चल रहा हो। परंतु अष्टांग योगी जो है उनको उनके लिए बताया गया है कि आधी आंखें खुली होनी चाहिए तुम्हारी, क्योंकि कुछ भी गड़बड़ हो सकता है। तो जंगल में करना है वो योग करना है वो तो जंगल में करना है, तो कोई जंगली जानवर आ जाए कुछ भी हो जाए। तो इसलिए अष्टांग योग में पूर्ण श्रद्धा भगवान के ऊपर वो नहीं रख सकता, उसको खुद के शारीरिक बल के ऊपर श्रद्धा, इसलिए उसकी आंखें आधी खुली आधी बंद रहती। परंतु यहां पर भगवान ने अपने गोप सखाओं को कहा पूरी आंखें बंद करो और ये तुरंत उन्होंने अपनी आंखें बंद करी। और ऐसा नहीं कि बीच में से कोई देख रहा था या थोड़ी आंख खोल के कि देखता हूं भगवान कर रहे कि नहीं कर रहे कुछ, तो मैं बुलाऊं फायर ब्रिगेड को। हमारे मोहन गोपाल प्रभु ये स्टोरी सुना रहे थे अपनी भागवतम क्लास में कि भगवान माखन चोरी करने के लिए गए गोपी के घर में अपने सखाओं के साथ, तो भगवान ने सबको कहा कि अपनी आंखें बंद करो और मैं सारी समस्याएं दूर कर दूंगा, कोई हमको पकड़ेगा नहीं कोई देखेगा नहीं। तो सभी आंखें बंद करते हैं, वो प्रवेश करते हैं अंदर, माखन वगैरह सब चोरी करने के बाद अब सब बाहर निकल रहे हैं। तो भगवान कहते हैं वापस आंखें बंद करो, वापस मैं तुमको बाहर ले जाऊंगा। तो उसमें से एक गोप वो अपनी थोड़ी सी आंखें खोलकर देखना चाहता है कि सही में ही करने की नहीं कर, क्या था पेंडिया पेंडिया तो थोड़ी सी आंखें खोल कर देखता है, जैसे ही वो आंखें खोल कर देखता है पकड़ा जाता है, क्योंकि उसको पूरी श्रद्धा नहीं होती। तो भगवान ने गोप सखाओं को कहा कि अपनी आंखें बंद करो, तुरंत उन्होंने अपनी आंखें बंद कर दी और भगवान ने वो पूरी दावाग्नि को पी लिया। तो उनके अंदर श्रद्धा थी। गोवर्धन लीला, भगवान ने अपने छोटी सी उंगली के ऊपर पूरा गोवर्धन उठाया और उठाने के पश्चात भगवान छोटे से ही भगवान 7 साल के, और भगवान ने अब सबको कहा कि इसके नीचे आओ। तो उस समय किसी ने भी एक दूसरे के प्रति कोई शंका व्यक्त नहीं की, अरे सच में जाऊं गिर गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे, ऐसा कोई नहीं था। नंद महाराज पहले आप जाके देखो, हम थोड़ा बाहर से देखते हैं मामला ठीक है क्या, फिर जाते हैं। नहीं, तुरंत सभी, उनके अंदर वो श्रद्धा थी। इसलिए देखिए, भगवान ने नंद महाराज को कहा था कि आप गोवर्धन की पूजा करो और आप देखना कि आपका जो डर है वर्षा होगी कि नहीं होगी, क्योंकि इंद्रदेव वो वर्षा के अधिष्ठात्रा देव है ना। तो नंद महाराज वो इंद्र पूजा इसलिए किया करते थे कि वर्षा होगी, वर्षा के वजह से फिर जो कृषि गोरक्षा वो सब फलेगा फूलेगा। तो फिर जब भगवान ने गोवर्धन उठा लिया और इतनी वर्षा हो रही है चारों तौर, तो भगवान नंद महाराज से कहते हैं, देखो मैंने कहा था ना कि इंद्र की पूजा नहीं करोगे तो ज्यादा वर्षा होगी, तो पिछले सालों से ज्यादा वर्षा हुई। तो उनके अंदर भगवान जो भी कुछ कहे थे, ब्रजवासियों के अंदर वो श्रद्धा थी। अघासुर वध, ये इतना बड़ा विकराल सर्प अपना जबड़ा खोले हुए, और गोप सखागण वो पहले प्रवेश किए और उनको पता था कि ये सर्प है, उनको पता था कि ये इतना बड़ा सर्प ये हमको मारने के लिए आया है, लेकिन फिर भी जानते बूझते हुए वो प्रवेश किए और वो एक दूसरे को क्या कहे, कृष्ण है ना, ये उनकी श्रद्धा। यहां पर ये कंस था भी नहीं वहां पर, और पता नहीं उसको पता भी लगता कि नहीं लगता, लेकिन फिर भी इनको डर, इनको ये श्रद्धा नहीं थी कि अगर ये भगवान को शरणागत होने जाएंगे तो भगवान बचाएंगे। तो ये गोप सखागण, ये आप डिफरेंस देखिए ये ब्राह्मणों के अंदर और वो ग्वाल बालों के अंदर, कि वो सर्प के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, ऐसे जहरीले आसुरी सर्प के अंदर, अघासुर के अंदर, ये कहते हुए कि कुछ भी अगर हमारे साथ हुआ तो कृष्ण है पीछे। जैसे प्रहलाद महाराज को जब वो पर्वत की चोटी से नीचे फेंका गया, तो प्रहलाद महाराज को पूरी श्रद्धा थी कि नीचे मेरे भगवान हाथ पसारे हुए खड़े रहेंगे मुझे पकड़ने के लिए। और क्योंकि उनके अंदर वो पूरी श्रद्धा थी इसलिए भगवान खड़े थे। जैसे वो कहते हैं ना, इफ कृष्णा आस्क्स मी टू जंप फ्रॉम अ माउंटेन टॉप, इफ कृष्णा आस्क मी जंप फ्रॉम दिस माउंटेन टॉप, अ प्योर डिवोटी विल जंप विदाउट हेजिटेशन। व्हाई? फॉर टू रीजंस। फर्स्ट रीजन, ही हैज फेथ that if I jump, Krishna will be there to hold me. And if not Krishna, Krishna will empower me to fly in midair. Both kinds of faith the devotee has. कि भगवान व्यक्तिगत रूप से मेरी सुरक्षा करेंगे या मुझे सक्षम बनाएंगे मैं अपनी सुरक्षा कर सकूं। जय श्री राधा मदन गोपाल जी की। जैसे वो वृंदावन के बाबा जी की कथा एक बार हमने सुनाई थी, ये बाबा जी अपने राधा कृष्ण के अर्च विग्रह की एक बहुत विशेष सेवा किया करते थे। और उनकी सेवा क्या थी कि वो रोज अपने राधा कृष्ण अर्च विग्रहों के लिए वो वस्त्र सीते थे, हर रोज नए वस्त्र सीते थे, वो अपने हाथों से सुई धागा लेके अपने हाथों से वो सीलते थे। तो उनकी दिन भर की यही सेवा, भगवान के वस्त्रों की सिलाई करना, नए नए वस्त्र। तो एक बड़ा व्यापारी आया वृंदावन में और उसने पता लगा उसको कि ये बाबा जी के विषय में, इनकी सेवा के विषय में, तो मिलने गया। उन्होंने देखा कि रोज वो अपने भगवान के लिए नए वस्त्र सील रहे हैं, परंतु खुद के वस्त्र फटे चिथड़े पहने हुए हैं। तो उन्होंने पूछा कि तुम्हारे भगवान के लिए जो इतने नए नए वस्त्र रोज सिलते हो, तुम्हारे भगवान तुम्हारे लिए एक वस्त्र भी नहीं देते ढंग का तुमको पहनने के लिए, क्यों पूजा कर रहे हो ऐसे भगवान की? तो उन्होंने बहुत सुंदर उत्तर दिया इस व्यापारी को। उन्होंने सुई धागा दिखाते हुए कहा कि देखो ये जो सुई धागा मैं इस्तेमाल करता हूं सिलाई के लिए, मेरा जीवन भी भगवान उसी प्रकार से किए हैं। जैसे कि जब हम सिलाई करते हैं तो सुई उस वस्त्र के अंदर पहले छेद करती है, सिलाई वैसे ही होती है ना, सुई पहले छेद करती है। तो छेद करना मतलब वस्त्र को थोड़ा सा फाड़ना उसके अंदर, परंतु उसके पीछे पीछे जो सुई है वो धागे को लेकर चलती है। तो जो थोड़ा सा फाड़ा है वो धागे से उसको वो सिलती है। तो ये बाबा जी ने इस व्यापारी से कहा कि भगवान मेरे जीवन को भी उसी प्रकार से सिल रहे हैं कि अभी आप सामने देख रहे होंगे कि मेरा जीवन फटा हुआ दिख रहा होगा, परंतु पीछे पीछे भगवान की सुरक्षा का धागा है जो सिल रहा है मेरे जीवन को। तो ये उनका साक्षात्कार था कि एक शुद्ध भक्त के जीवन में जब तकलीफें भी आती हैं तो वो सुई की चुभन के समान है, परंतु उसको श्रद्धा क्या रहती है कि इस सुई के पीछे भगवान की कृपा का धागा है। अब हमारी स्थिति क्या है कि हम डाउट करते हैं धागा है कि नहीं, पहले धागा दिखाओ भगवान, आपने सुई के अंदर धागा पिरोया है कि नहीं, और कौन सा धागा पिरोया है, अच्छा सुतली उतली है ना, पहले हम वो मेक श्योर करते हैं फिर बाद में अब चाहे सुई चुभ हो चलेगा। लेकिन भगवान कृष्ण भक्ति में हमको कैसे सस्पेंस में रखते हैं, भगवान कहते हैं कि तुम मुझ पर श्रद्धा रखो, पहले ये मत देखो कि पीछे धागा लगाया है कि नहीं सुई के पीछे। तो जैसे एक पिता अपने छोटे से शिशु के लिए सब कुछ करता है जब शिशु छोटा होता है, उसको नहलाएगा धुलाएगा खिलाएगा पिलाएगा सब कुछ उसके लिए करेगा। तो वैसे ही भगवान कृष्ण जब हम भक्ति में बहुत ही नौसिखिया रहते हैं तो भगवान व्यक्तिगत रूप से सब कुछ करते हैं। फिर जब वो शिशु बड़ा होता है तो पिताजी उसको सिखाता है कि अब तुम खुद कपड़े कैसे पहनो, अब तुम खुद कैसे हाथ से खाना खाओ, है कि नहीं। अब मान लो कि वो बड़ा हो गया 15-20 साल का हो गया, फिर भी पिताजी आप खिलाओ ना, पिताजी आप नहलाओ ना। तो यदि वो 15-20 साल का हो गया और फिर भी उसके पिताजी उसको खिला रहे नहला रहे हैं तो इसमें इंसल्ट किसकी है, पिताजी की है ना। कि इतना बड़ा वो लैंगदा हो गया, इतना बड़ा हो गया और अभी भी वो पिताजी को ही सब कुछ करना पड़ रहा है। तो ये मैं उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि भक्ति में जब बहुत वर्ष बीत जाते हैं और हम फिर भी भगवान से अपेक्षा रखते हैं कि भगवान आप करो, भगवान आप मेरी समस्या दूर करो, भगवान आप व्यक्तिगत रूप से आके ये करो वो करो, तो हम उसी बड़े 20 वर्षीय लड़के के समान हैं जो पिताजी से अभी भी अपेक्षा रखता है कि पिताजी आप मुझे नहलाओ। तो भक्ति में भी जब एक ऐसा स्तर आता है जब भगवान हमको ट्रेन करते हैं हाउ वी कैन टेक केयर ऑफ आर सेल्व्स, तो वो स्टेज हमारी भक्ति का आना चाहिए और इसमें भगवान का गुणगान कर रहे हैं हम। व्हेन द सन बिकम्स इंडिपेंडेंटली टेकिंग केयर ऑफ हिमसेल्फ, दैट इज द ग्लोरिफिकेशन ऑफ द पेरेंट्स। बोलते ना अब अपने पैरों पर खड़ा हो गया, मतलब उसको उसके दो पैरों पर खड़ा किया किसने? माता पिता ने। तो उसमें गुणगान माता पिता का होता है। अच्छा, थर्ड फाइनल स्टेज क्या है? फर्स्ट स्टेज है बचपन में सब कुछ माता पिता करते हैं बच्चे के लिए। सेकंड स्टेज है कि बच्चा अब खुद करने लगता है और फाइनल स्टेज है कि अब बच्चा मां बाप के लिए सब कुछ करता है जो मां बाप बचपन में बच्चे के लिए करते थे। यह है फाइनल स्टेज। तो भक्ति में भी ये फाइनल स्टेज हमारी आनी चाहिए। पहली स्टेज भगवान सब कुछ हमारे लिए करेंगे भक्ति में लाने के लिए, भक्ति में टिकाने के लिए, फिर हमको इंडिपेंडेंटली कैसे अपने आप को टिकाए रखना है, कैसे भक्ति की क्रियाओं को स्वयं इंस्पायर्ड होके करना है, और फाइनल स्टेज है फिर हम सब कुछ वापस उन भगवान को दें जिनसे हमको ये सब कुछ प्राप्त हुआ है। जैसे कि बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो वो बूढ़े माँ बाप की उस प्रकार से देखभाल करता है जैसे माँ बाप उस बच्चे की देखभाल किए थे जब बच्चा बचपन में कुछ भी नहीं करने के लिए सक्षम था। सो दीज आर द 3 stages ऑफ अवर प्रोग्रेस इन डिवोशनल सर्विस। यहां पर ये जो ब्राह्मण, इनके जो 3 stages मैं थोड़ा एनालाइज कर रहा था, ये याज्ञिक ब्राह्मणों के 3 stages और इनकी पत्नियों के 3 stages क्या क्या थे। तो ब्राह्मणों के 3 stages थे। सबसे पहला स्टेज ब्राह्मणों का था अनफॉर्चुनेट स्टेज, दुर्भाग्य की स्थिति इनकी। दुर्भाग्य की स्थिति क्या थी इनकी कि ब्राह्मण होने के बावजूद इनको पता नहीं था कि इनके यज्ञ का उद्देश्य क्या है। ये एक दुर्भाग्य इनका। दूसरा दुर्भाग्य इनका यह था कि इनको यह भी नहीं पता था कि इनकी पत्नियां जिनसे इनका विवाह हुआ है वो भगवान की शुद्ध भक्त हैं। सो द फर्स्ट स्टेज ऑफ द ब्राह्मणास इज बीइंग अनफॉर्चुनेट इन 2 ways। दे वर इग्नोरेंट अबाउट द पर्पस ऑफ देयर ब्राह्मणिकल ड्यूटीज एंड दे वर इग्नोरेंट अबाउट द ग्लोरीज ऑफ देयर वाइव्स। तो हमारी भी स्थिति ऐसी होती है, हमको जो कृष्ण प्रेम ऑलरेडी हमारे अंदर दिया हुआ है हम उसके लिए इग्नोरेंट रहते हैं, जस्ट लाइक दे वर इग्नोरेंट अबाउट देयर वाइव्स डिवोशन, सिमिलरली वी आर इग्नोरेंट अबाउट अवर ओन डिवोशन एंड दे वर इग्नोरेंट अबाउट द पर्पज ऑफ देयर ब्राह्मणिकल ड्यूटीज, सिमिलरली वी आर इग्नोरेंट अबाउट अवर ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ। तो ये फर्स्ट स्टेज ये ब्राह्मणों का अनफॉर्चुनेट। फिर अनफॉर्चुनेट से वो बने फॉर्चुनेट। कैसे फॉर्चुनेट बने कि जब उनकी पत्नियों को उन्होंने देखा कि अरे हमसे आगे तो ये निकल गई, तो पत्नियों को देखने के बाद फिर 2 चीजें हुई। they got knowledge about their own duties and they got knowledge about the devotion of their wives. लेकिन आज का जो श्लोक है, आज के श्लोक में जो थर्ड स्टेज हम इन ब्राह्मणों के जीवन में देख रहे हैं, वो कौन सा स्टेज है? मोस्ट अनफॉर्चुनेट हो गए अब ये. फ्रॉम अनफॉर्चुनेट दे बिकेम फॉर्चुनेट, फ्रॉम फॉर्चुनेट दे बिकेम मोस्ट अनफॉर्चुनेट. कैसे? कि मन में भगवान के प्रति वो विश्वास है, उत्कंठा है, परंतु कंस का भय. इसको बोलते हैं मोस्ट अनफॉर्चुनेट. ज्ञान है परंतु इंद्रिय भोग नहीं छोड़ सकते, वो आसक्ति नहीं छोड़ सकते. इसलिए जब हमारी साधना भक्ति में हमारी भी ये स्थिति होती है कि हमको पहले कृष्ण भक्ति के बारे में कुछ नहीं पता था, सो वी वर अनफॉर्चुनेट. फिर कृष्ण भक्ति के बारे में पता लगा, वी बिकेम फॉर्चुनेट. और कृष्ण भक्ति करने के दौरान फिर हम हमारी आसक्तियां नहीं छोड़ रहे हैं, सो वी बिकम नॉट जस्ट अनफॉर्चुनेट, वी बिकम मोस्ट अनफॉर्चुनेट. क्यों मोस्ट अनफॉर्चुनेट? बिकॉज वी नो वी हैव टू गिव इट अप बट वी आर नॉट विलिंग टू. दैट इज कॉल्ड मोस्ट अनफॉर्चुनेट. और इनकी जो पत्नियां, जो ब्राह्मण पत्नियां, उनकी तीन स्टेजेस कौन सी? उनकी फर्स्ट स्टेज थी अनफॉर्चुनेट स्टेज. अनफॉर्चुनेट कैसे? क्योंकि उनका विवाह ऐसे पतियों के साथ हुआ था, तो ये उनके लिए अनफॉर्चुनेट सिचुएशन थी कि उनका विवाह ऐसे पतियों के साथ हुआ था जिसके कारण वो भगवान का दर्शन भी नहीं कर पाती थी. ये उनके अनफॉर्चुनेट सिचुएशन. लेकिन उस अनफॉर्चुनेट सिचुएशन से ब्राह्मण पत्नियां फॉर्चुनेट कैसे बनी? श्रवण कर करके, दीर्घ श्रुतियां कि श्रवण, दीर्घ श्रुत, श्रवण करके वो अनफॉर्चुनेट से, दुर्भाग्य की स्थिति से वो सौभाग्य की स्थिति में आए. एंड फ्रॉम देयर दे बिकेम मोस्ट फॉर्चुनेट बिकॉज दे यूज्ड व्हाट एवर दे हर्ड इन कृष्ण बलराम सर्विस. तो एक तरफ इनके पति, एक तरफ ये पत्नियां. देखो तीन स्टेजेस इनके. तो अभी हमें चुनाव करना है कि हम किसका क्लब ज्वाइन करें. एक तरफ ये आज के श्लोक में जो सबसे बड़े दुर्भाग्य की स्थिति में ये ब्राह्मण बताए गए हैं सुखदेव गोस्वामी द्वारा, और दूसरी तरफ ये जो पत्नियां जो कि दुर्भाग्य की स्थिति से सौभाग्य की स्थिति में और सौभाग्य की स्थिति से पूर्ण सौभाग्य की स्थिति में, मोस्ट फॉर्चुनेट दे बिकेम. सो दिस इज व्हाट वी लर्न. अब मैंने जो बताया कि ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है हम स्ट्रगलिंग साधकों के लिए, तो इसका जो भाग दो हम लेंगे वो हम लेंगे देवकी और वसुदेव का उदाहरण लेते हुए कि देवकी और वसुदेव, उनके पास तो वैलिड रीजन था कंस से भयभीत रहने का, क्योंकि कंस ने उनको कारागृह में डाल रखा था. तो देवकी और वसुदेव ने कैसे निर्भय होकर भगवान श्री कृष्ण को शरणागत हुए, उसकी चर्चा हम करेंगे हमारे भाग दो में इस श्लोक को लेते हुए. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम. किसी का कोई प्रश्न?
हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, बहुत सुंदर क्लास दी प्रभु जी. प्रभु जी इसमें जैसे डिफरेंस आपने बताया श्रद्धा और विश्वास, तो प्रभु जी इसमें श्रद्धा क्या हम इस तरह से समझ सकते हैं कि इसमें एलिमेंट ऑफ लव, सैक्रिफाइस एंड सरेंडर भी छुपा हुआ है? सो काइंडली एलोबरेट ऑन दिस.
मतलब हमारा सरेंडर?
हाँ,
वो तो कहने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि जो शुद्ध भक्त जिनके अंदर भगवान के प्रति श्रद्धा है, जैसे हमने उदाहरण लिए प्रहलाद महाराज गोपियों का उदाहरण, प्रहलाद महाराज का, ग्वाल सखाओं का उदाहरण, जिनके अंदर जो श्रद्धा थी भगवान के प्रति, तो उसके साथ साथ शरणागति, उसके साथ साथ प्रेम, वो सब कुछ छिपा है। क्योंकि जैसे हमने बताया कि श्रद्धा जो है वो भगवान की कॉम्पिटेंस को देखकर नहीं है, इतना भगवान के चरित्र को देखकर है। तो जब हम भगवान के चरित्र से आकर्षित होते हैं तो हमारे अंदर प्रेम अपने आप होगा। जैसे कि कोई दंपति है, तो अगर पत्नी पति के काबिलियत से आकर्षित है तो कोई जरूरी नहीं उसके अंदर प्रेम होगा उसके प्रति। पति की काबिलियत क्या है? पढ़ा लिखा है, बहुत पैसे कमा रहा है, नाम है, शौहरत है, तो अगर पत्नी उससे आकर्षित है केवल, तो वो सब अगर चला गया एक दिन, अगर वो पति का सब कुछ चला गया, तो अगर पत्नी ने उसके बलबूते पर शादी की है तो वो शादी टिकेगी नहीं। परंतु यदि पत्नी पति के चरित्र को देखकर उससे विवाह करती है तो वो विवाह कभी टूटेगा नहीं, क्योंकि वो कैरेक्टर बेस्ड है। तो वैसे ही जब लोग बोलते हैं ना गॉड इज ग्रेट, गॉड इज ग्रेट, तो वो क्या है, उनका विश्वास है भगवान के ग्रेटनेस के ऊपर। परंतु जो शुद्ध भक्त हैं वो भगवान के स्वीटनेस पर अपनी श्रद्धा रख रहे हैं, क्योंकि वो भगवान के ग्रेटनेस के परे भगवान के कैरेक्टर को देख रहे हैं। इसलिए जो लोग केवल भगवान को ग्रेट मानते हैं, जब उनके जीवन में कुछ गड़बड़ होती है तो वही भगवान को गाली देते हैं फिर वो, कि उसी ग्रेट भगवान ने मेरे जीवन में ग्रेट कलामिटी डाली। लेकिन जो भगवान से प्रेम करते हैं, जो श्रद्धा रखते हैं, चाहे उनके जीवन में कुछ भी आ जाए, चाहे वो हमारे वृंदावन के बाबा जी, सुई धागे का उदाहरण उन्होंने दिखा, बिकॉज दे नो द कैरेक्टर ऑफ कृष्णा, दैट वॉट एवर कृष्णा विल डू इट विल बी फॉर माई गुड ओनली, उसको बोलते हैं श्रद्धा।
हरे कृष्णा प्रभु जी, जब कोई टेस्ट, जैसे इन ब्राह्मणों के जीवन में ये टेस्ट आया, हमारे भी जीवन में कुछ श्रृंखला समझो टेस्ट की हो रही है। हम लोग कभी एक पार कर लेते हैं, फिर दूसरा भी पार कर लेते हैं, लेकिन तीसरे में हमें पता चलता है हम फेल हो गए, इट कुड बी दी हायर लेवल। तो जैसे व्हाट कुड बी दी होप फॉर दी साधकास, कि चलो पता चल गया कि ये टेस्ट में हम लोग फेल हो गए, तो फिर उसके बाद क्या ये होना चाहिए, मूड होना चाहिए और क्या प्रयत्न होना चाहिए?
सबसे पहले तो भगवान का आश्वासन है कि यदि कोई प्रामाणिकता से मेरी भक्ति कर रहा है तो कोई फेल होगा ही नहीं। नेहा भिक्रम नाशुस्ति, वो श्लोक का अर्थ क्या है? There is no loss. There is no loss, there is no diminution, which means there is no failure if one is sincere. मतलब वो फेलियर तो हमको दिखता होगा कि अरे मुझे जो अपेक्षा थी वो अपेक्षा पूरी नहीं हो रही, तो हमको फेलियर दिख रहा होगा। परंतु अगर हम प्रामाणिक हैं तो भगवान के दृष्टिकोण में भगवान अपने भक्त को कभी फेल होने ही नहीं देते। नमे भक्त प्रणश्यति, जो भगवान ने कहा है। वो जैसे वो स्टोरी है ना कि एक बार भगवान एप्पल बांट रहे थे, आध्यात्मिक संसार से आए एप्पल्स बांट रहे थे। तो एक बच्चा भगवान का भक्त, वो भी लाइन में खड़ा था, लंबी लाइन थी, वो भी लाइन में खड़ा था। तो जब उसका नंबर आया तो भगवान के हाथ में जो एप्पल था, भगवान ने उसके हाथ में न डालकर उसको फेंक दिया और उसको कहा कि फिर से पीछे लाइन में जाओ, तो तुम्हारा नंबर गया। तो फिर से लाइन में जाता है, ऐसे दो तीन बार वो जाता है, उसको लगता है कि मेरे टाइम पे भगवान वो एप्पल को फेंक क्यों देते, मेरे हाथ में क्यों नहीं देते। तो फाइनली फिर भगवान ने कहा कि तुम मेरे इतने विशेष भक्त हो तो तुम्हारे लिए विशेष एप्पल मैं उगा रहा हूं, उसको टाइम लग रहा है, और ये जो मेरे हाथ में है ये थोड़ा सड़ा हुआ एप्पल है, इसलिए मैं इसको फेंक रहा हूं। तो उस समय उसको लग रहा था कि उसका फेलियर है, मैं इतना लंबे लाइन में खड़ा होकर मेरा नंबर आया, भगवान ने मेरे को एप्पल नहीं दिया, बाकी सबको दे रहे हैं। Why? Because he was perceiving it as failure, but God was actually waiting to give him the freshest of all apples. So if we are sincere, there is no failure in bhakti. It's just a matter of time. Huh? Apples are being grown somewhere if we are sincere. But if we are not sincere, humko सड़े हुए एप्पल भी मिल जाएंगे, कभी हम उसमें भी संतुष्ट हो जाएंगे। चलो, इफ वी आर इनसिंसियर, कृष्णा विल सी, ही इज इनसिंसियर, ओके, ही विल बी सैटिस्फाइड विद रॉटन एप्पल्स ऑल्सो, सो वी विल गो अवे विद रॉटन एप्पल्स। बट इफ वी आर सिंसियर, इवन इफ वील हैव टू गो बैक इन टू द लाइन अगेन एंड अगेन एंड अगेन, वी हैव टू नो दैट, हैव दैट फेथ दैट कृष्णा इज ग्रोइंग the most delicious apples for me personally somewhere. Hare Krishna. Any other question or good question?
Hare Krishna Prabhu. Sir, ye third stage jo aapne bataya, first, second aur third jo, to usme first stage the jo sab log usi stage mein, fir second mein bhi aa jate hain, lekin third mein is kaljug mein dono mein se खास करके जो मोस्ट फॉर्चुनेट की कंडीशन है उसमें जाना बड़ा मुश्किल लगता है, तो उसको कैसे हम मिस जाए, क्या कैसे जा सकते हैं उसमें?
इसलिए तो ये सारे जो शास्त्रों में उदाहरण हैं, जैसे ब्राह्मण पत्नियों का उदाहरण जो है, इनके पदचिन्हों पर हम जब चलेंगे प्रामाणिकता से, तो इनके पदचिन्हों पर चलते हुए हम भी इन्हीं की तरह मोस्ट फॉर्चुनेट बन सकते हैं। इसलिए श्रील प्रभुपाद हर समय कहा करते थे, महाजनो ये न गतस्त पंथ, कि हमारी सफलता या हम अपने आप को मोस्ट फॉर्चुनेट कब और कैसे बना सकते हैं, जब हम इनके पदचिन्हों पर चलेंगे एज इट इज। तो जैसे ये प्रसंग है, ये प्रसंग में हम जब पढ़ेंगे इस प्रसंग को कि इनके पतियों ने क्या गलती की, वो हम न करें। ये गलतियां भी बताई गई हैं भागवतम में, वो क्यों बताई गई हैं, ताकि हम वो न करें पढ़कर। और फिर इनकी पत्नियों ने जो किया, श्रवण किया और इतनी तीव्रता से श्रवण किया, तो हम वैसा श्रवण करें। और उन्होंने केवल श्रवण नहीं किया, जब समय आया तो उन्होंने भगवान की सेवा भी की। ये नहीं कि हाँ, कई बार हमको श्रवण अच्छा लगता है, लेकिन भगवान के लिए शरणागति का जब समय आता है तब वो श्रवण कितना पक्का हमने किया है वो समझ में आएगा तब। तो जब ऐसे उदाहरणों को हम इनका अध्ययन करेंगे, श्रवण करेंगे और अपने जीवन में उतारेंगे, इनके पदचिन्हों पर चलेंगे, जैसे प्रहलाद महाराज, ये ब्राह्मण पत्नियां, गोपियां, सो वी विल ऑल्सो बिकम मोस्ट फॉर्चुनेट, अगर हम वो प्रामाणिकता से उसका पालन करेंगे। Krishna will make us most fortunate. That faith we should have. Jai Shila Prabhupad ki jai, Granth Raj Shrimad Bhagavatam ki jai. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय।